आचार्य श्री के पास की घटना बताऊं सिद्धवरकूट की, जल्दी समझ में आ जाएगा, लेकिन सवान हो तो कहिएगा। इसमें से गाथाएं भी पढ़नी है, हम दो दिन से भूल जाते हैं अब, लेकिन वो आचार्य श्री वाली घटना पहले सुना देते हैं फिर बाद में ये, क्योंकि वो भूल जाएंगे, ये तो भूल भी जाएंगे तो इसमें से पढ़ नहीं अकेला है। तो क्या हुआ, सच्ची घटना है 96 की, और उन व्यक्ति ने मुझे सुनाई। वो विदिशा से वहां पहुंचे सिद्धवरकूट, और वहां देखा तो आचार्य श्री बैठे हुए थे मंदिर में, और उनके पास 5-7 लोग बैठे चर्चा कर रहे थे, और आचार्य श्री बढ़िया उनसे बात कर रहे थे। बाकी बाहर एक टेबल लगा दी गई थी, दर्शन करने वाले दर्शन करके चले जाएं, डिस्टर्ब नहीं करें, ये भी बाहर खड़े हो गए। देखना मजा, बाहर खड़े होके अब भैया वो चर्चा चल रही है, अपन काय को भीतर डिस्टर्ब करो, यही सेवा है। हाँ, अनुकूल वातावरण बनाना धर्म ध्यान का, ये सेवा है। तो उन्होंने बाहर से खड़े होकर के किस अच्छी चर्चा कर रहे हैं, अपन को थोड़ी बहुत सुनाई पड़ेगी, अपन यहीं से सुनो, काय को वहां जाकर के डिस्टर्ब करो, जब टेबल लगी है इसका मतलब है कि सबको अंदर जाने की परमिशन नहीं है, एक कॉमन सेंस की बात। वो बाहर खड़े हो गए, उनके बाजू में एक और खड़े हैं दोनों जन। अब वो ये सोच रहे हैं कितना सौभाग्य इन 5-7 लोगों का, ये कहां के लोग हैं, ये फैमिली कहां से आई है, आचार्य श्री से इनको बात करने का सौभाग्य मिला। उतने में ही सुनाई पड़ा कि उसमें से किसी एक बिटिया ने आजीवन ब्रह्मचर्य, अरे वाह इन्होंने तो आजीवन व्रत ले लिया, इसीलिए आचार्य श्री ने इनको बात कर रहे हैं इनसे, बड़ा अच्छा है अपन को कम से कम इतनी चर्चा सुनने का सौभाग्य मिल गया। दूसरे जो बाजू में खड़े हैं उनकी प्रतिक्रिया देखना, वो इनको अनजान जान करके क्या कह रहे हैं, चल हम तो सोच रहे थे कि धर्म के क्षेत्र में पक्षपात नहीं होता होगा, यहाँ भी इतने बड़े आचार्य के पास आके देखा हमने, अपन नोरे का कछु आदमी नहीं है का, अपन बाहर हैं खड़े, और जी देखो 5 लोग भीतर बैठे इनसे बातें कर रहे हैं, अपन से अपन क्या वो हैं क्या भैया, हमने तो सब जगह देख लिया जाकर के, सब ऐसा ही है, क्या धरा इसमें। देखो आप, वो ये सोच रहे हैं कि बहुत सौभाग्य कि इन 5 से बात करते आचार्य श्री को मैं सुन पा रहा हूं, देख रहा हूं, और अब भी ये 5 बाहर निकलेंगे तो मैं तो पैर छूलूंगा इनके, कि सौभाग्य आपका कि आपको 2 शब्द बोलने सुनने मिले। और वाकई में जब वो 5 निकले तो इनने बताया कि हमने उनके पैर छू लिए, लेकिन वो व्यक्ति पैर क्या छूना, वो तो कसमसा रहा है भीतर। अब इतना ही नहीं, खत्म नहीं हुई बात, अभी आगे बढ़ी। वो 5 जन जल्दी से 16 के कपड़े पहन के और खड़े हो गए पड़गाने, और आचार्य महाराज निकले, और उनने चूंकि व्रत लिए हैं सो उनके पास जाकर के पड़गाए भी गए। अब तो वे जो व्यक्ति थे अब तो बिल्कुल कभी नहीं आएंगे, देख लिया हमने सब, उन्हीं से बात कर रहे थे और सीधे उन्हीं के त्योहारों को चले गए। और मालूम जिन व्यक्ति ने मुझे बताया उनने क्या किया, उनने एक तो उनके पैर छू लिए थे, सो पैर छूने से हो गया परिचय, सो उस परिचय का लाभ ये मिला कि उनने कहा कि तुम भी हमारे संगे पड़गार भी खड़े हो जाओ, सो ये भी उतई में शामिल थे, सो इनको भी पड़गाने मिल गया और इनको भी दान देने आहार देने मिल गया। बात समझ में आ गई, प्रक्रिया वही है, सब कुछ वही है, आपके भीतर जैसी भावना, आप उसी में से धर्म निकालना चाहें तो धर्म ले सकते, और उसी में से संक्लेश कमाना चाहें तो संक्लेश कमा सकते हैं। ये प्रक्रिया है आचार्य भगवंतों ने इस तरह से श्रावक को जो क्रियाएं कर रहा है सुबह से शाम तक, उसकी क्रियाओं को धर्म ध्यानमय बनाने के लिए शायद ये ऐसी प्रक्रिया रखी हुई है। इसका लाभ अपन कितना ले पाते हैं ये अपन को देखना चाहिए, फिर अपन एक आध और उदाहरण देख लेंगे, ध्यान आ जाएगा। अभी तो आपका सौभाग्य है कि एकदम, मैं तो सोचता हूँ सवेरे से बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, आप ये नहीं समझना आपको, क्योंकि इतनी सारी चीजें और ध्यान में और इतने दिन से लगातार, और अभी मेरे सामने पूरा टाइम अभी बाकी बचा, सब एकदम दिमाग में सेट करके रखा है कि ये चीजें पूरी, लेकिन अपने को क्या करना, अपने को ज्यादा से ज्यादा जितना बने उतना सीख करके अपने जीवन को परिवर्तित करना भैया, और कुछ नहीं, मेरे को बहुत जानकारी है, ऐसा ना मुझे अहंकार आना चाहिए और ना आपके अंदर इस तरह का आना चाहिए भाव, अपने को तो सिर्फ अपने कल्याण का भाव है, इतना ही ध्यान में रखने की प्रक्रिया है। और इससे अपन को स्वयं भी इन सब चीजों को जानने की रुचि जागृत होनी चाहिए। मैं कोई ऊपर से सब जान करके थोड़ी आया था, मुझे संस्कृत नहीं आती थी, मैं आज आचार्य श्री को हमेशा जब भी संस्कृत पढ़ता हूँ, कोई भी वाक्य पढ़ता हूँ और उसका अर्थ समझाता हूँ, फौरन याद आ जाता कि कैसे उन्होंने स्लेट पेंसिल लेकर के पहले दिन, पहले ही दिन स्लेट पेंसिल आई थी कि लिखो छोटा आ धन छोटा बराबर बड़ा आ, संधि स्वर संधि, यहां से पढ़ाना शुरू किया। एक साल तक लगातार, एक साल तक संस्कृत, बस अब तुम्हें किसी से नहीं पढ़ना पड़ेगा, कम से कम पढ़ तो सकोगे, अर्थ निकाल सकोगे, बस इतना ही, और ज्यादा नहीं करना लिखने लिखने का, बहुत लिखा है आचार्यों ने संस्कृत में, बस उनके अर्थ लगा सको और अपना कल्याण कर सको, इतना ही पर्याप्त। ये शिक्षा भी लेना भैया, इन ग्रंथों को बीच बीच में इसलिए कोट करता हूं कि ये सब आचार्य भगवंतों ने उपकार करके अपन को भी इसमें रुचि लेकर के, और पढ़ना चाहिए, जब और बहुत सी चीजें पढ़ते हैं तो ये दो तीन गाथाएं इनका अर्थ अपन देखें। अन्नाइनम सुथानम कपनिचान देश काल जुत्तम दानम जैन मुचियम गिहीन सिखावयम भणियम। प्राकृत भाषा में ये लिखा आचार्य महाराज ने, हिंदी किया, दो शुद्ध अन्न यति को समयानुकूल देशानुकूल प्रतिकूल कभी न भूल, तो संविभाग अतिथि व्रतयो बनेगा रे स्वर्ग मोक्ष क्रमवार अवश्य देगा। यदि हम सबसे पहले, क्यों ये लिखा, चार प्रकार के दान में सबसे श्रेष्ठ दान सभी आचार्यों ने एक मत से कहा है आहार दान। चार प्रकार के में सब आचार्य एक मत हैं और वो कहते हैं कि आहार दान ही सबसे श्रेष्ठ है। कल शाम को भी मैंने कहा था, आचार्य भगवंतों ने तो यहां तक लिखा कि आहार क्या दिया, मानो मोक्ष मार्ग दे दिया, क्योंकि उसके द्वारा, एक एक ग्रास के द्वारा पूरे दिन धर्म ध्यान होने वाला, वही अगर सामान्य व्यक्ति ग्रहण करे तो क्या करेगा, दिन भर राग द्वेष करेगा, और वही व्यक्ति अगर चतुर्विध संघ में मुनि आरिका शावक शाविका के द्वारा ग्रहण किया जाए तो वही धर्म ध्यान में निमित्त बन जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि शुद्ध आहार दान देना चाहिए यति जनों को, कैसे, समयानुकूल देशानुकूल प्रतिकूल कभी भी नहीं, प्रकृति के विरुद्ध नहीं देना, ये अतिथि संविभाग है। इससे क्या होगा, इससे पहले स्वर्ग मिलेगा फिर मुक्ति भी होगी, क्रमवार स्वर्ग और मोक्ष दोनों परंपरा से यह दान मुक्ति का कारण है, साक्षात भी कारण तो नहीं बनेगा, परंपरा से निर्वाण का कारण बनेगा, पुण्य का इससे अर्जन होगा। इस तरह यदि हम अपने जीवन में इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएंगे, समझेंगे एक एक चीज पर, आज अपन ने यह समझ लिया कि हमें गुणों के अनुराग से सेवा करनी है और अपने गुण बढ़ाने के लिए सेवा करनी है, और सेवा की जो विधि है, प्रक्रिया है, उसके अनुरूप सेवा करनी है, और सेवा करते समय अपने परिणाम हमेशा टटोलते रहना है कि मैं अपने परिणामों को इतनी देर के लिए निर्मल कर पाया कि नहीं। आचार्य महाराज हमेशा कहते कि मुझे बहुत संकोच लगता है पैर दबवाने में, क्या दबवाना, रोज रोज बड़े बड़े लोग आते हैं वो पैर दबाने लगते, कहते फिर ये सोच करके, मुझे तो आवश्यकता नहीं, पर ये सोच के कि इनका धर्म ध्यान होगा, इतने आधे घंटे यहाँ बैठे हैं, उतना आधे घंटे तो कम से कम धर्म ध्यान होगा, नहीं तो बाहर कहीं पान की दुकान पर या कहीं किसी बैठे हुए गप्पा सप्पा करते रात में, और क्या करते, और इस बहाने कम से कम उतना धर्म ध्यान, जैसी संगति करेंगे वैसा जो है हमें उसका लाभ मिलेगा। हमें कभी भी लेकिन ये भावना नहीं रखनी चाहिए कि इनसे हमें प्रति उपकार के रूप में कुछ मिले, अगर मांगना भी है तो क्या मांगेंगे, परिणामों की निर्मलता मांगेंगे, हमारा जीवन अच्छा बने यही हम आपकी सेवा से चाहते हैं। एक बार कैसा हुआ कि वो क्या बोलते हैं, किसी व्यक्ति के यहाँ पर और बेटा नहीं था, तो उन्होंने भगवान से बहुत प्रार्थना करी, गुरुजनों से प्रार्थना करी कि भगवान हमको बेटा हो जाए, हमको इतनी उम्र हो गई हमारी, 50-60 साल के हो गए, अभी तक हमारे पुत्र ही नहीं हुआ, हो जाता ऐसा, और ऐसा संयोग देखो उनके किसी साता कर्म का उदय आ गया होगा जिसकी वजह से उनके पुत्र हो भी गया इतनी उम्र के बाद भी, अब देखना, लेकिन पुत्र तो हुआ पर उसकी दोनों आंखें रोशनी से विहीन थी, अंधा हुआ, अब क्या करें, चलो कम से कम हुआ तो, उसको पढ़ने लिखने के लिए अंधों का जो स्कूल होता है उसमें भेज दिया, वहीं रहेगा 12-15 साल वहां रह करके और पढ़ लिख करके लौटा, लेकिन आंख तो नहीं लौट सकती। आकर के सबसे पहले उसने, बड़ा हो गया था समझदार, आकर के उसने कहा, पिता क्या आपके भी आंखें नहीं हैं? अरे नहीं नहीं बेटे, हमारे तो रोशनी है आंखों में, तुम्हारी माँ को भी है रोशनी, बस वो तो पता नहीं क्यों तुम्हारे लिए आंखों की रोशनी नहीं मिली। नहीं पिता, मुझे लगता है कि आपको भी आंखों में रोशनी नहीं है। क्यों, मैं तो बिल्कुल भला चंगा हूं, आंखों से देखता हूं। नहीं, लगता तो मुझे भी है कि आप भी अंधे हैं। अरे ऐसी कैसी बात कर रहा है तू, हम तो सब देख, कैसे हम विश्वास दिलाएं, तेरे आंख होती तो तू देख लेता कि हमारे तो आंख दुरुस्त है। नहीं, मुझे लगता है कि मेरी आंखें नहीं होने का कारण यही है कि आप भी अंधे हैं, तभी तो आपने भगवान से मुझे मांगा। भगवान से भगवान ही को मांग लेते तो शायद आपको मैं आंख वाला मिल जाता। ये आपका अंधापन ही तो है जो आपने संसार मांगा है। अगर आप परमार्थ मांग लेते उन भगवान से तो शायद आपका और मेरा दोनों का कल्याण हो जाता। छोटी सी घटना है लेकिन बड़ा संदेश देती है कि अपन क्या चीज मांगे, कि आपके जैसे गुणों की प्राप्ति हो भगवान, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। चाहिए भी है तो क्या चाहिए, अपने परिणामों की निर्मलता। अपने परिणामों की निर्मलता से मेरे सब काम आसान हो जाएंगे। जब पुण्य का अर्जन होगा, पाप की निर्जरा होगी, तो सारा आसान हो जाएगा। वो तो मांगने की जरूरत ही नहीं। मैं धान की खेती करूंगा तो पाल तो फोकट में मिलेगी, चावल तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसी भावना से यदि हम ये सारी दान की या सेवा की वृत्ति रखते हैं तो हमको अधिक अधिक होगा, हमारा जीवन अच्छा बनेगा। इसी भावना के साथ वो आचार्य गुरु विद्यासागर।